ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरकों पर एकमुश्त विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन करने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है, जो कड़ी मेहनत करके पूरे राष्ट्र का पेट भरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में भारत की सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक गौरव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अयोध्या में राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवसर रहा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अबुधाबी में बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करना भारत के सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर देश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। नई दिल्ली में कल अपने मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 42 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य की दिशा में करीब 32 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं और पिछले वर्ष जून से दिसंबर तक 4 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रख्यात लेखक, शिक्षाविद, मंत्रालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस नामक पुस्तक को 7 खंडों में प्रस्तुत किया गया है और 3,000 वर्षों से अधिक के इतिहास का इसमें संकलन है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित ये पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है। एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 14.50 रुपए की कटौती की गई है। अब 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,804 रुपए होगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस को 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतें 803 रुपए ही बनी रहेंगी। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंची आज से भारत की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। वे आज और कल नई दिल्ली में ईरान भारत राजनीतिक परामर्श के 19वें दौर की बैठक में भाग लेंगे। भारत और ईरान के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का आधार है। वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 17.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत में पाकिस्तान की जेलों में बंद कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वो 183 भारतीय मछुआरों और कैदियों में से सजा पूरी कर चुके लोगों को रिहाई और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाए। भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे अत्यधिक जहरीले कचरे को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में भरने के लिए 100 लोगों के एक समूह ने रविवार से 30 मिनट की शिफ्ट में काम किया। ये कचरा धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में नष्ट किया जाएगा। कोयला मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार दिसंबर 2024 में कोयला उत्पादन और ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिसंबर महीने के दौरान कोयले का उत्पादन 9,79,40,000 टन हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मूल फोटो पहचान पत्र दिखाने पर सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खोले गए काउंटरों से टिकट खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।